श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सचीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांतो नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। स्वागत आप सबका। और भगवद गीता के 18 अध्यायों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और अब तक 14 अध्यायों पर चर्चा कर चुके हैं। अब आखिरी के 4 अध्याय बाकी हैं जो इस हफ्ते हम लोग पूरा करेंगे। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 15वें अध्याय पर, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो भगवद गीता में भगवान की श्रेष्ठता को कई स्थानों पर स्थापित किया गया है और ये पुरुषोत्तम योग ये ऐसा ही एक अध्याय है जहां श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को स्थापित किया जा रहा है भगवद गीता व्यास देव या स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा। तो इसीलिए इसको हम अब चर्चा करेंगे आप सबके साथ इस 15वें अध्याय की। सो यहाँ पर सो भगवद गीता 15वां अध्याय। 14 अध्यायों में बहुत सा ज्ञान हम सबको मिल चुका है और अब हम तैयार हैं भगवद गीता के अंत तक। बस अब अंतिम उपदेश 18वें अध्याय में आएंगे तो उसको लेने तक थोड़ा सा बस अब हम पहुंच ही रहे हैं। कहना चाहिए कि बस भगवद गीता को अंत तक पहुंचा रहे हैं और जो जो भाव इस अंत में भगवद गीता सुनने के जो प्रभाव अर्जुन पर हुआ उसको भी 18वें अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से तात्पर्य दिए हैं, इनको समझाया है जैसे अर्जुन ने समझा वैसे ही। तो इसीलिए हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये है पुरुषोत्तम योग या भगवान जो पुरुषों में उत्तम है उनका योग। छोटा सा अध्याय है 20 श्लोकों का, लेकिन सबसे पहले चर्चा करता है 5 श्लोकों में कि कैसे इस जगत से हमें अनासक्त होना चाहिए। देखिए अब तक 14वें अध्याय तक भगवान ने बहुत सारा ज्ञान दिया और मूलतः अगर प्रारंभ से देखें तो भगवान यही ज्ञान दे रहे हैं। जैसे प्रारंभ में ही 2 अध्याय में भगवान ने आत्मा का विषय दिया। किस लिए दिया? ये समझाने के लिए कि हमें शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि ये शरीर तो केवल कपड़े के समान है, हम तो शुद्ध आत्मा है। फिर आगे के अध्यायों में उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया कि आप कर्म करते हो तो फिर आपको पाप लगेगा पुण्य लगेगा, इसीलिए इन पाप पुण्यों से भी अनासक्त हो जाओ और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अकर्म में लगो। फिर आगे भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया 6 अध्याय में जहां भी वर्णन यही है कि किस तरह हमें ध्यान योग की विधि बताई गई, कैसे ध्यान योग होना चाहिए, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, जाना है साफ सुथरा हो, अलग रहो, बहुत ध्यान करो, मतलब इंद्रिय भोग से अनासक्त होना पूर्ण रूप से। और फिर सातवें अध्याय से भगवान ने चर्चा की भक्ति की, शुद्ध भक्ति, जिसमें केवल भगवान से आसक्ति का वर्णन किया गया। तेरहवें में ज्ञान दिया, चौदहवें में ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के द्वारा हम विरक्त हो सकें। और अब पंद्रहवें अध्याय के पहले पांच श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इस भौतिक जगत से हम विरक्त हो सकते हैं, अनासक्त हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं। और फिर छठे श्लोक से ग्यारहवें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जब तक इस जगत से अनासक्त नहीं होता तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में वो जाता रहता है। तो ये वर्णन भगवान करते हैं। और फिर 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं किस तरह ये उनकी जो स्थिति है वो कैसे इस जगत को पालन करते हैं, पालनकर्ता के रूप में। एक बड़े सुंदर भजन में कहा गया है, तुमी तो रक्षक आर पालक अमार, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे पालन करने वाले हैं। तो भगवान उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं इन श्लोकों में कि किस तरह वो पालन करते हैं। और फिर 16, 17, 18 ये तीन श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। क्यों? इन्हें त्रिश्लोकी गीता कहा जाता है। जैसे हम पहले सुन चुके हैं चतुर्श्लोकी गीता, त्रिश्लोकी गीता, ऐसे एक श्लोकी गीता भी है। तो ये त्रिश्लोकी गीता मतलब तीन ही श्लोकों में भगवान ने सारा सार दे दिया, वेदांत सार। इसको वेदांत सार भी कहा जाता है। तो ये वेदों का जो अंत, वेदों का जो सार है, उसको भगवान ने प्रकट किया कि वेदों के द्वारा भी अगर कोई जानने योग्य वस्तु है या वेदों में हमें कुछ जानना चाहिए तो वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और इस अध्याय का अंत करते हैं वे ये बताकर कि जो कृष्ण को जान लेता है वो सब कुछ जानता है। तो ये वर्णन इस पूरे अध्याय में किया गया। तो भगवान ने ये प्रारंभ क्यों किया, ये इस जगत से अनासक्त होना इत्यादि, इसका वर्णन, क्योंकि 14वें अध्याय में भगवान ने बताया कि तीन गुणों में व्यक्ति फंसा है, तीन गुणों से बाहर जाना है, भक्ति करना है और अनासक्त होना है। तो अब 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करने के लिए अनासक्त होना जरूरी है, और कैसे कर सकते हैं। तो वो एक वृक्ष की बात करते हैं, एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं और उसको लेकर इस भौतिक जगत को हमें समझाते हैं। तो पहले पांच श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे अनासक्त होना है। पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलं मदशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवे। तो भगवान बताते हैं कि ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं, एक ऐसा पेड़ है जिसकी जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। ऊर्ध्वमूलं अधम शाखं, ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है। और छंदांसि यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते हैं वो सब वेद हैं, वेदों के मंत्र हैं। तो इसका वर्णन वो कहते हैं, यस्तम वेद स वेद, जो इसको जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, वो वेदों के सार को समझ जाता है। तो ये कौन से वृक्ष का वर्णन है? ऐसा तो हमने इस जगत में कोई वृक्ष नहीं देखा कि जिसकी जड़ें ऊपर हों और सारे उसके पत्ते वगैरह, जो उसकी शाखाएं हैं, वो नीचे हों, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। तो भगवान ये जिस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, दरअसल एक भौतिक जगत को समझाने के लिए कि कैसे जो भौतिक जगत है ये केवल एक छाया मात्र है। हम उल्टा वृक्ष एक ही जगह देखते हैं छाया में। अगर आप किसी जल के निकट हो, किसी नदी या किसी जलाशय के निकट हो, और वहां पर एक वृक्ष हो तो आप देखेंगे कि वो वृक्ष जल में उल्टा दिखाई देता है। तो एक ही स्थान है जहां उल्टा दिखाई देता है, लेकिन वो वृक्ष उल्टा नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। तो इसी तरह हम लोग यहां इस जगत की जो बात कर रहे हैं तो एक आध्यात्मिक जगत है, भगवान का धाम है, सच्चा जो जगत है, सच्चा पेड़ है, और उसका प्रतिबिंब यहां दिखता है हमें। और हम यहीं पर उस प्रतिबिंब में बहुत प्रयास करते हैं कि किसी तरह हम कुछ कुछ प्राप्त कर लें, और उसके लिए हम एक शाखा से दूसरी शाखा घूमते रहते हैं। इसीलिए ये जो वृक्ष है, ये मोह रूपी वृक्ष है, इसको हमें समझना चाहिए। समझने से क्या होगा, हमारे अंदर ये जो भौतिक कार्यों में इतनी रुचि है कि हम भगवान को भूल रहे हैं, भौतिक कार्यों में इतनी रुचि है कि हम यहां से बाहर जाना भी इच्छा नहीं करते हैं, भौतिक कार्यों में इतनी रुचि है कि सामने आने वाली मृत्यु को हम नहीं देख रहे हैं, तो उन भौतिक कार्यों से हम दूर हो सकेंगे, अनासक्त हो सकेंगे। दूर होने का अर्थ ये नहीं कि कार्य छोड़ देंगे, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रहेगी जो हमें भगवान को देखने नहीं देती, जो आने वाली मृत्यु को देखने नहीं देती, जो एक एक भगवान का धाम, आध्यात्मिक धाम, उसको देखने नहीं देती, या कहना चाहिए अपनी ही पहचान को देखने नहीं देती। और ये होगा कब, ये पूर्ण नहीं है कि हम सब चीजें छोड़ दें, पूर्ण वो होता है जब हम छोड़ने के साथ साथ आसक्त हों किससे, भगवान की दिव्य सेवा से। सच्चा ज्ञान, सच्ची सफलता जीवन में तब है जब हम एक तरफ तो अनासक्त हों और दूसरी तरफ कृष्ण से आसक्ति बढ़ती जाए, दिव्य सेवा में आसक्ति बढ़ती जाए। केवल छोड़ देने से सब कुछ प्राप्त नहीं होने वाले हैं कृष्ण, उनसे आसक्ति चाहिए, और वो आसक्ति आती है दिव्य सेवा के द्वारा। ये जो भौतिक जगत है, भगवान बताते हैं कि तीन गुणों से इसका पोषण होता है, गुण प्रवृद्ध विषया प्रवाला अदश्य मूलानि अनुसंतदानी कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कि यहां बताते भगवान की जगत में अलग अलग गुण हैं और उन गुणों से उसका पोषण हो रहा है, और उसी के आधार पर अलग अलग शरीर मिलते हैं। जिस आधार पर गुण है उसी के आधार पर शरीर मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, जब बहुत कम पानी होता है तो फिर जमीन को बंजर कहा जाता है, बहुत ज्यादा पानी होता है तो जमीन हरी हरी हो जाती है। तो उसी तरह जब गुणों की कम मात्रा या ज्यादा मात्रा जिसमें होती है, जिस शरीर में या जिस जीव के अंदर, उसको वैसा ही शरीर मिल जाता है। तो ये जो जगत है इसमें हम सकाम कर्म या ऐसे काम करते हैं जिनसे कुछ प्राप्त करना है, और ये तीन गुणों में फंसे रहते हैं, और ये जो पेड़ है इसको पोषण देते रहते हैं। उद्देश्य है पेड़ को सुखाना, हमें अपने लिए कम से कम इससे बाहर जाना। तो भगवान कहते हैं न रूपमस्य हे तथोपलभ्यते, कि इसका जो रूप है, इस असली रूप इस वृक्ष का कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि है ही मोह, और इतना ज्यादा जटिल है, क्या क्या नहीं है इसके अंदर, अलग अलग योनियों में घूमता है जीव, बहुत सारे कार्य करता है, तो क्यों नहीं समझ सकता कोई इसको, क्योंकि इसका जो जड़ है वो ऊपर की ओर है, और इतना सारा फैल गया है, इतना बांध दिया है कि अब संभव नहीं है इससे बाहर निकलना। जो फंसा हुआ है वो कैसे उस चीज को समझ सकता है। हाँ, कोई बाहर खड़ा है, ऊपर खड़ा हुआ है जल के, वो देख सकता है, लेकिन जो इसमें फंसा हुआ है वृक्ष को, उसको समझ ही नहीं आ रहा कहां से निकलना है, क्या करना है। देखिए, ये भौतिक जगत है, जब हम इस जगत में इतने फंसे होते हैं कि हम अभी अब बस साल दो साल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हम इतने फंस गए कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि इसके परे कोई जगत है, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि इसके परे भी जीवन है। हमें लगता बस ये किसी तरह समाप्त हो जाए, बस इसको कर ले, ये हो जाए, पढ़ाई पूरी हो गई सब हो जाएगा, जब नौकरी मिल गई सब हो जाएगा, शादी हो गई सब हो जाएगा, बच्चे हो गए सब हो जाएगा, बच्चे बड़े हो गए सब हो जाएगा, बच्चे बड़े हो गए, अब हम बूढ़े हो गए, अब सब हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं। तो ये इस जगत में हम इतने फंसे हुए हैं कि हम आगे का देख नहीं पाते, इसलिए भगवान कहते इसको जानना बहुत कठिन है। तो फिर भी प्रयास तो करना चाहिए, जानना तो कठिन है, लेकिन क्या प्रयास भी नहीं करें इसको जानने का? कर सकते हैं, इसका जो मूल है उसको ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे? जब हम अच्छे संग में होते हैं, उन लोगों के संग में जिन्हें भगवत ज्ञान है, जो भगवान को जानते हैं, जिन्होंने भगवान को समझ लिया है शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, अपने साक्षात्कार के माध्यम से, ऐसे लोगों से हमें संग करना चाहिए जिससे हम इसके मूल को समझ सकें। और ऐसे अगर हम उसको समझेंगे, इस वृक्ष को, तो अब क्या करना चाहिए वृक्ष को समझकर? इसको काटना है, हमें फंसे नहीं रहना है। वृक्ष समझ में आ गया कि हाँ बहुत बड़ा वृक्ष, अब क्या करना है? अब काटना है इसको। कैसे? भगवान कहते हैं इसके लिए काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। वो कुल्हाड़ी क्या है? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, भगवान कहते हैं इसको एक शस्त्र लो, अनासक्ति का जिसके वर्णन भगवान ने अभी किया, और दृढ़े न, दृढ़ता से इसको काट दो। और क्या करें फिर काट कर, कहां जाए? तो भगवान कहते हैं कि काटने के बाद आप व्यक्ति को इस वृक्ष के परे जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात श्री कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। सो इसलिए ये इस वृक्ष से बाहर जाने का मार्ग है। हम उन लोगों का संग करें, या एक सरल भाषा में कहा जाए, इस जगत में फंसे हुए हैं, हर कोई जानता है फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का मार्ग नहीं है, बस जीवन है इसीलिए किसी ना किसी तरह जी रहे हैं, नहीं मार्ग है बाहर जाने का। भक्तों का संग कीजिए, ऐसे लोगों का संग कीजिए जो कृष्ण भक्ति में रत हैं, जिन्होंने कृष्ण को जान लिया है, जिन्होंने कृष्ण को जीवन समर्पण किया है। और ये करने के बाद जब हम आए तो दृढ़ता से हम इससे परे जाकर भगवान को समर्पण करें, ये यहां कहा गया है। और ये कहने के बाद भगवान तुरंत कहते हैं, अच्छा कौन है जो समर्पण कर पाएगा? कह तो दिया कि समर्पण करो, तो उसके गुण क्या है? तो भगवान यहां कहते हैं, निर्मान मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम वंदे विमुक्त सुख दुख सत्ने गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययंतर। सो भगवान यहां उस व्यक्ति के लक्षण दे रहे हैं जो समर्पण कर सकता है। निर्माण मोहा, सबसे पहले तो मान सम्मान की भावना से दूर रहना चाहिए। ये मान सम्मान की भावना है जो हमें बहुत कष्टों में रखती है, अर्थात इस जगत में बनाए रखती है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं, समर्पण नहीं कर पाते भगवान को, क्योंकि हमें मान सम्मान चाहिए, हम भगवान को कैसे मान सम्मान देंगे? इसीलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, और साथ साथ ये जितना भी मोह है, निर्माण मोहा, ना तो मान सम्मान की कामना हो, ना ही मोह की मोह में पड़े रहे व्यक्ति, तब समर्पण कर सकता है। और जित संग दोषा, ऐसे सारे संग को त्याग दे जो झूठ की ओर ले जाता है, कृष्ण से दूर ले जाता है, जित संग दोषा। और फिर अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः, तो क्या करना है? शाश्वत जगत, शाश्वत भगवान, शाश्वत आत्मा और शाश्वत संबंध को समझने का प्रयास करना है। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः, जितने भी काम की वासनाएं, उससे पूरा वो विमुक्त हो चुका होता है, तब भगवान को समर्पण करता है। सो भगवान को समर्पण करने के छह स्टेप्स कह सकते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, या छह लक्षण कह सकते हैं। तो क्या लक्षण है? इसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर अपने भजन में समझाते हैं। ధన్యాత్ము నివేదన గోప్తృప్తే వరాన అవశ్యరాకి మే కృష్ణ విశ్వాస పాల భక్తి అనుకూల మాత్ర కార్యర స్వీకార భక్తి ప్రతికూల భావ వర్జనంగీకార. లక్షణ బతాయే హ పూర్ణతా కి ఓర్ బడనే మే సమర్పణ కి ఓర్ బడనే మే తో క్యా హై పహలా దైన్య నమ్రతా హోనీ చాహియే హృదయ మే ఉస్ నమ్రతా కే ద్వారా క్యోంకి జబ్ తక్ నమ్రతా నహీ హై అహంకార నహీ హై నిర్మాన మోహ అహంకార భరా హువా హై అహంకార భరా సర్ భగవాన్ కే సామ్నే ఝుక్తా నహీ హై ఐసా కహా గయా హై కి జో సర్ భగవాన్ కే సామ్నే నా ఝుకే వో తో కేవల్ బోఝా హై. జో ఆంఖే భగవాన్ కా దర్శన నా కరే వో కేవల్ మోర్ పంఖ పర్ లగీ హుయీ ఆంఖే హై ఇసిలియే నమ్రతా హోనీ చాహియే ఝుకనా చాహియే భగవాన్ కే సమక్ష. తో నమ్రతా పహలీ చీజ్ దైన్య. నమ్రతా క్యా హై? నమ్రతా హై అప్నీ స్థితి కో స్వీకార్ కర్నా కి హమ్ కౌన్ హై. హమ్ కోయి బహుత్ బడే వ్యక్తి నహీ హమ్ కోయి బహుత్ శక్తిశాలీ వ్యక్తి నహీ హమ్ కోయి బహుత్ గుణవాన్ హమ్ కోయి బహుత్ కళావాన్ వ్యక్తి నహీ హై. హమ్ క్యా హై? హమారే పాస్ జో భీ హై భగవాన్ కి కృపా హై. యే నమ్రతా హై కి భగవాన్ కి కృపా హై జో భీ హమారే పాస్ హై తో ఉస్కో లేనా. దూసరా ఆత్మనివేదన. ఆత్మనివేదన్ మతలబ్ అప్నే ఆప్ కో భగవాన్ కి సేవా మే సమర్పిత్ కర్ దేనా. నమ్రతా ఆ గయి. అబ్ హమ్నే జాన్ లియా కి హమ్ తో బహుత్ శూద్ర హై హమారా హమ్ కేవల్ భగవాన్ కే దాస్ హై. దాస్ కో క్యా కర్నా హై? సేవా మే సమర్పిత్ ఆత్మనివేదన్. ఔర్ ఆత్మనివేదన్ హోనే కే బాద్ కిస్ భావ మే జబ్ హమ్ ఆత్మనివేదన్ కియా తో క్యా కర్నా హై? గోప్తృప్తే వరణ. భగవాన్ కో హీ అకేలే స్వామీ మాన్నా హై. ఏకేలక్ ఏక్ హీ స్వామీ హై. ఔర్ జబ్ ఐసీ స్థితి హోతీ హై తబ్ హమే పూరా విశ్వాస్ హోతా హై. చౌథా లక్షణ క్యా హై? విశ్వాస్. అవశ్య రక్షీ మే కృష్ణ విశ్వాస పాలన్. హమే విశ్వాస్ హై కి కృష్ణ హమారీ రక్షా కరేంగే చాహే కుచ్ భీ హో జాయే. ఔర్ కృష్ణ కర్తే భీ హై. కభీ కభీ తక్లీఫో మే డాల్ దేతే హై. ఉన్కే ప్రతి ప్రేమ్ బఢానే కే లియే కభీ కభీ ప్రేమ్ కమ్ హో జాతా హై తో కృష్ణ కష్ట మే డాల్ దేతే వక్త్ కి ఓ కృష్ణ బచావ్ బచావ్ బచావ్. ఇసి కహతే హాన్ అబ్ ఠీక్ హై ఆగే సే కమ్ కరోగే ప్రేమ్ తో ఫిర్ సే కష్ట మే డాలోగే. तो अवश्य राक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन. और उसके लिए दो चीजें अंतिम बड़ी महत्वपूर्ण है. भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार. ऐसे ही कार्यों को केवल करना, ऐसे कार्यों को स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है, जो हमें कृष्ण की ओर ले जाते हैं. और भक्ति प्रतिकूल, भक्ति के विरुद्ध जो है उन सबको त्याग देना, छोड़ देना, चाहे वो कुछ भी कितना ही प्रिय क्यों ना हो. अगर वो भक्ति में हमें मदद नहीं करता, कृष्ण की ओर ले जाने में मदद नहीं करता, छोड़ दीजिए उसको. तो ये समर्पण के लक्षण हैं. तो ये भगवान ने कहा निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्यावृत्त कामा. तो लक्षण बताए उस व्यक्ति के. और फिर अब ये लक्षण बताने के बाद जब भगवान ने कहा कि समर्पण करना है, मेरे पास आना है, निर्माण मोहन, तो कहाँ आना है भगवान, आपका धाम कहाँ है, कैसा है आपका धाम, तो भगवान वर्णन करते हैं अपने धाम का. न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम. तो भगवान कहते हैं कि मेरा धाम कैसा है, न तद भासयते सूर्यो, सूर्य की जरूरत ही नहीं है, स्वयं प्रकाशमान है. कोई कह सकता है ऐसे कैसे होगा, कहीं ना कहीं से तो कोई सोर्स होगा लाइट का, ऐसे कैसे. भगवान कहते हैं न सूर्य न शशांक को, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, और ना ही पावक अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. तो फिर लाइट कहां से आएगी? देखिए इस जगत में भी एक ऐसा लोक है जहां सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। इस जगत में भी ऐसा एक उदाहरण हमारे सामने, वो स्वयं प्रकाशमान है। आपको याद आ रहा है कौन सा है? हम बताते हैं, सूर्य। सूर्य को, सूर्य में जो है प्रकाश के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं है सूर्य में। वो अपने में ही इतना प्रकाशमान है, वो दूसरों को प्रकाश दे रहा है। तो जैसे इस जगत में सूर्य है जिसको कोई जरूरत नहीं है बाहर के किसी चीज की, इसी तरह वैकुंठ में जितने भी लोग हैं वो सब ऐसे ही हैं, वो सब प्रकाशमान है सूर्य की तरह, और उनका सारा प्रकाश मिलकर ब्रह्म ज्योति बनता है जो मूलतः गोलोक से आता है, वृंदावन गोलोक से। लेकिन उनका सारा प्रकाश मिलकर ब्रह्म ज्योति बनती है, जिसको कभी कभी लोग सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, बस हम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाए, विलीन हो जाए तो जीवन सफल नहीं। ये ब्रह्म ज्योति आ कहां से रही है, प्रकाश आ कहां से रहा है? अरे उन लोकों से, उन वैकुंठ लोकों में जहां भगवान है, भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा है, हमें प्रवेश वहां करना। तो भगवान उस धाम का वर्णन करते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? समर्पण। अभी अभी जिसका वर्णन किया भगवान, समर्पण के बिना उस धाम तक पहुंचना संभव नहीं है। जब तक हम कृष्ण को समर्पण नहीं करते, बद्ध अवस्था में रहते हैं। जीवों की ही दो श्रेणियां होती हैं, शरक्षाक्षर एव च, एक वो जो बद्ध रहते हैं और हमेशा फिर वो अंधकार में रहते हैं। ये भौतिक जगत दरअसल अंधकार में है, इसीलिए बाहर के वस्तु को सूर्य चाहिए प्रकाश के लिए, जैसे ही सूर्य चला जाता है अंधकार हो जाता है। ये कैसा है ये भौतिक जगत? एक नारियल की तरह है। हम देखते हैं नारियल में बाहर बड़ा कड़ा उसका आवरण होता है, उसके भीतर लाइट नहीं जा सकती, अंदर जल होता है आधे में और फिर ऐसे बना तो वैसे ही ये ब्रह्मांड है, कोई बाहर का प्रकाश अंदर नहीं आता, उसका आवरण इतना कड़ा है। तो जब तक इस जगत में है अंधकार में है, मुक्त अवस्था में फिर हम भगवान के धाम में, भगवान के संग, भगवान के मित्र, भगवान के प्रेमी, भगवान के माता पिता, भगवान के सखा, ऐसे इस रूप में हम शाश्वत जीवन का आनंद लेते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी स्थिति को पहले समझना है, तब हम जानेंगे कि हमें यहां से वहां जाना है, क्यों जाना है, जीव की मूल स्थिति क्या है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव क्या है? जीव भगवान का शाश्वत अंश है। इस बात को बारंबार हमें अपने आप को दोहराना चाहिए, अपने आप को ये समझाना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और इसीलिए इस जगत में हम भोग करने का प्रयास करते हैं, इस जगत में बड़ा आनंद लेने का प्रयास करते हैं। बारंबार याद दिलाइए, हर रोज याद दिलाइए, सुबह उठिए अपने आप को याद दिलाइए, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। रात को सोने जा रहे हैं एक बार बोल दीजिए, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम भगवान के अंश हैं, शाश्वत अंश, सनातन। ऐसा नहीं कि आज हैं फिर कल नहीं रहेंगे, मुक्त होने के बाद नहीं रहेंगे, नहीं, सनातन। तो हम उनके अंश हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग टी शर्ट पहनते हैं जिस पर यहां लिखते हैं आई बिलोंग टू कृष्ण। ये हमारी सही स्थिति है, हम कृष्ण के हैं, आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करते हैं। यहाँ ये नहीं कोई कहता है इस जगत में, अरे आप कहां से हो, मैं दिल्ली से हूं, आप कहां से हो, मैं अमेरिका से हूं। लेकिन हमारी सही पहचान क्या है? कोई हमसे पूछे आप कहां से हो, आप गोलोक से हैं, हम आध्यात्मिक जगत से हैं, ये हमारी सही पहचान है। और इसीलिए हम लोग यहां, तो फिर यहां क्यों आ गए अगर हम वहां के? थोड़ी सी स्वतंत्रता है हमारे पास, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, हम थोड़ा सा छोटी सी स्वतंत्रता लेकर इस जगत में घूमने घामने आ जाते हैं, कष्ट लेने, अब फिर वापस चले जाएंगे। तो इस समय जब यहां आ जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या है? हम बंधे हुए, बांध दिया गया है, और इसीलिए संघर्ष है। संघर्ष कौन व्यक्ति करता है? जो बंधा हुआ, जो मुक्त व्यक्ति है वो क्या संघर्ष करेगा? तो जो बंधा है वो संघर्ष करता है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन को भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन जब सत्वगुण में होता है तो हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो अच्छे होते हैं। मन जब रजोगुण में होता है तो जितने भी कार्य हैं वो कष्ट देते हैं, और मन जब तमोगुण में होता है तो फिर हमें नीचे की ओर जाना होता है। हम लोग उसको सुन चुके हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो इसलिए जीव की स्थिति, अपने आप की स्थिति को समझ लीजिए, आपको कभी कष्ट नहीं होगा। हम भगवान के हैं तो इस समय के लिए यहां पर हैं, बस फिर चले जाएंगे, इसको हमें समझना है। और इसको समझकर हम इस शरीर में, यहां जब इस भौतिक जगत में अलग अलग जो शरीर ले रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं, क्यों हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं। हम शुद्ध आत्मा हैं, अभी हमने वर्णन किया, और हमारा तो धाम वहां है, हम तो वहां बिलोंग करते हैं, लेकिन जब तक यहाँ हैं तब तक हमें अलग अलग शरीर लेने पड़ते हैं। जैसे हमने बताया मन के आधार पर, मन हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, क्योंकि मन आज भी हमारा दूसरा शरीर बना रहा है। हम जो मन में सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसके द्वारा नया शरीर बन रहा है, तो इसीलिए मन हमें दूसरे शरीर में ले जाएगा। सो यहां जब तक हम इस शरीर के मालिक हैं, इस शरीर को हम नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रित क्या करते हैं, हम ये निर्णय लेते हैं कि हमारा अगला शरीर क्या होगा, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो ये जो बदलाव है ये हमारी चेतना पर आधारित है, मृत्यु के समय हमारी क्या चेतना होगी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है ठीक है मर जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण समय है, इसीलिए हमें उसको सीखना है, उसकी कला सीखनी है। आप जीने की कला सीखिए या ना सीखिए, क्योंकि वो तो वैसे भी है, कुत्ते बिल्लियों में भी जीने की कला है, मरने की कला सीख लीजिए, क्योंकि जितनी जिस समय मरने के समय हमारी जो चेतना होती है वही बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे अगली गति को निश्चित करती है। अगर उस समय हमारी चेतना बहुत अच्छी है, हमारे गुण बड़े अच्छे हैं, तो हम फिर ऊपर के लोकों में भी स्थित हो सकते हैं। अगर हमारी चेतना उस समय कुत्ते बिल्लियों की तरह है तो फिर हमें वैसे ही शरीर मिलेगा, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं तो हम भगवान के लोक जा सकते हैं। तो देखिए ये चेतना बहुत आवश्यक है। या उस समय हम क्या सोच रहे हैं, आप लोगों ने कभी विचार किया कि अचानक मान लीजिए कि मृत्यु हो जाए, आज अभी इसी समय क्या विचार करेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारे मन में? कृष्ण का स्मरण आएगा, अपने बच्चों का स्मरण आएगा, पैसे का स्मरण आएगा, जो इन्वेस्टमेंट किया उसका स्मरण आएगा, जो जगह खरीद रहे थे उसका स्मरण आएगा, किसका स्मरण आएगा? तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अपनी चेतना को सतत आज से अभी से भगवान में लगाने का प्रयास करना है, ताकि हम इस अवसर को खोना बैठें जो हमें इस भगवद गीता के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो ये हम जानते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसका आधार क्या है, चेतना। तो फिर वर्णन आता है कि चेतना आधार है, आपने कहा तो जो मूल चेतना है वो तो शुद्ध है, तो अब क्या हुआ है, अब वो उसमें कुछ मिश्रण आ गया है। मूलतः आध्यात्मिक जगत में या मूलतः आत्मा ये शुद्ध है, लेकिन चेतना बदल जाती है, कैसे, जिन गुणों का आप संग करते हो, जिसे चित्त कहते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि कैसे शुद्ध चेतना है, हम तो आध्यात्मिक ही भौतिक, कैसे मिश्रण हो जाता है, क्या आत्मा की चेतना दूषित हो जाती, मिल नहीं, आत्मा की चेतना शुद्ध रहती है, लेकिन जो बदल जाता है वो क्या है, वो चित्त है। जैसे उदाहरण के लिए हम कई बार बता चुके हैं कि ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट सफेद रंग की लाइट दे रही है, और उसके ऊपर आप लाल रंग का कागज लगा दीजिए तो जो लाइट हमें दिखाई देगी वो लाल होगी, लेकिन ट्यूबलाइट जो लाइट दे रही है वो केवल सफेद ही है। आत्मा ट्यूबलाइट की तरह समझ लीजिए, तो वो जो प्रकाश दे रहा है वो शुद्ध है, उसकी जो चेतना है वो शुद्ध है, लेकिन जब आवरण आ जाता है उस पर, तो उसके बाद जो चेतना का प्रकट्य होता है, उसके बाद जो ट्यूबलाइट की लाइट का प्राकट्य होता है वो लाल है, वो मिश्रित है। तो जैसे पानी में अलग अलग रंग मिलाएं अलग अलग हो जाता, लेकिन मूल चेतना हमारी है कृष्ण भावना वृत्त। अगर उसको गुणों से उसमें मिश्रण हो जाए, उसके ऊपर आवरण आ जाए, कपड़ा आ जाए, कागज आ जाए लाल रंग का, तो फिर हमें अलग अलग शरीर लेने पड़ते हैं 84 लाख योनियों में। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, हमें दिखता क्यों नहीं है, ये भी तो बात होनी चाहिए कि अरे शरीर बदल रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं क्यों नहीं दिखता, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, क्योंकि ज्ञान की आंखें नहीं है मूर्खों। भगवान वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं विमूढ़ा, आपकी चेतना आपकी बुद्धि बड़ी मूर्खतापूर्ण है, आप कैसे देखोगे इस शरीर के बदलाव को, आपके अंदर ज्ञान चक्षु नहीं है। ज्ञान चक्षु मतलब आपकी आंखें प्रशिक्षित नहीं है ज्ञान में, जिससे वो सब कुछ स्पष्ट देख सके। तो कौन सा ज्ञान चाहिए इसके लिए, ये भगवत गीता का ज्ञान। जिन लोगों ने भगवत गीता का ज्ञान नहीं लिया वो ये चीज नहीं देख पा रहे कि अरे शरीर बदल रहे हैं, कब बदल रहे हैं, मृत्यु पर नहीं, आज भी बदल रहे हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं कि अभी भी तो शरीर बदल रहे हैं, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो, हम छोटे से बच्चे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर शरीर और बड़ा हुआ, फिर हम और बड़े वृद्ध हो रहे हैं, ये सारे शरीरों के बदलाव आप क्यों नहीं देख पा रहे हो। ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान से देखो। तो इसीलिए जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हैं वो इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और कौन है वो लोग, वो हैं भक्ति योगी या भगवान के भक्त, ये वर्णन भगवान करते हैं। नैनम पश्यन्त्य चेतसः, तो जो भगवान के भक्त हैं वो उनको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, चीजों को जैसी हैं वैसी देख सकते हैं। क्यों, उन्होंने आत्म साक्षात कर लिया है, उन्होंने अपने आप को समझ लिया, इस जगत को समझ लिया, भगवान को समझ लिया। ज्ञान के केवल 3 ही अंग हैं, इन 3 चीजों को समझ लें ज्ञान परिपूर्ण। क्या है, आत्मा, ये भौतिक जगत और भगवान, इन तीनों की स्थिति, इन तीनों के मध्य संबंध और ये तीनों का क्या कार्य है, इसको समझ लिया ज्ञान पूर्ण हो गया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस ज्ञान को समझते हैं। तो ये भगवान की या भक्त की स्थिति बताकर फिर भगवान अब अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं कि दोनों ही तरह के लोगों का पालन मैं ही करता हूं। कृष्ण हरेक का पालन करते, जब हमें ये पता चल जाए कि कृष्ण कैसे हमारा पालन कर रहे हैं तो हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो सकते हैं। कृष्ण कहते जैसे सूर्य है, यदा आदित्य गदम, तो सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, चंद्रमा प्रदान करता है कुछ प्रकाश, जैसे सूर्य निकलता है सारे कार्य शुरू हो जाते, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन या अग्नि इत्यादि, तो ये आता कहां से, सूर्य को प्रकाश कहां से आता है, चंद्रमा को प्रकाश कहां से आता है, प्रदान करने वाले तो भगवान ही है। तो भगवान बताते हैं कि ये सब केवल मेरी शक्तियों का प्राकट्य है। ये जो जितने भी लोक देख रहे हो, सूर्य इत्यादि भी लोक है। नामा विश्व च भूतानि धारयाम अहमोजसा उष्णामि च औषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः, अगर मेरी शक्ति से मैं इन ये जो जितने भी लोक हैं उनको मैं धारण नहीं करूं तो सब गिर जाएंगे। तो भगवान से ही सब कुछ आता है। और फिर भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, आप सोचते हो सूर्य चंद्रमा बड़ी दूर की बात है, आपको एक बड़ा रहस्य की बात बताते हैं। भगवान कह रहे हैं, आप कुछ खाते हो तो जो खाते हो उसको जो पचाने की शक्ति है वो भी मैं ही हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा। आपके अंदर जो पचाने की शक्ति है, सोचिए आप खाना खाएं और आपको हजम ही ना हो, कैसे करोगे, कैसे रहोगे जीवन में? तो भगवान उस अग्नि के रूप में, जठराग्नि के रूप में हमारे साथ में है। जैसे आप जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, तो जैसे भोजन करने लगते हैं, सो जो जठर है या पेट है, तो छोटा सा स्थान है, उसमें एक अग्नि जलने लगती है ताकि वह उसको पचा सके, उसको अग्नि कहते हैं, तो उसको जठर अग्नि कहते हैं। अहम वैश्वान तो ये भगवान है, अगर वो अग्नि ना हो तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये अग्नि है और इसी के कारण जो अलग अलग प्रकार के, साधारणता चार प्रकार के भोजन या भोज्य पदार्थ बताए जाते हैं जिनको खाया जाता है, या जैसे जिनको हम निगल जाते हैं, जिनको चबाते हैं, जिनको चाटते हैं और जिनको सक किया जाता है। तो ये चारों प्रकार के अल्प पदार्थ ये केवल भगवान की कृपा से हम पचा सकते हैं। तो भगवान ने ये बताया कि किस तरह मैं सभी जीवों का पालन करता हूं, इवन अगर वो कुछ खा रहे हैं तो उनको अगर डाइजेस्ट करने की भी शक्ति मैं ही दे रहा हूं, सूर्य में दे रहा हूं, चंद्रमा में दे रहा हूं, जीवित नहीं रह सकते उसके बिना। और इतना ही नहीं, भगवान कहते इतना करने के बाद मैं संतुष्ट नहीं होता कि चलो अब हो गया इनके पास, वो मैं स्वयं उनके हृदय में प्रवेश करता हूं। सर्व सिचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मेरे से इतना रहा नहीं जाता, प्रेम इतना है कि मैं सबके हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। और क्या करता हूं, मत्तः मुझसे ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है, विस्मृति आती है। और अगर वेदों में कुछ जानने योग्य वस्तु है, वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो, केवल कृष्ण को ही जानना है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदांत की रचना वेदों की करता हूं और मुझे ही इसमें से जाना जाता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, साक्षी हैं, उपदृष्टा अनुमंताचा, वो देख रहे हैं हृदय में सब कुछ चीजों को। और जो जीव है वो कार्य कर रहा है कैसे अपने पूर्व जन्म के अनुसार, वो भूल जाता है। जीव भगवान को भूल चुका है, ये भी भूल चुका है कि मुझे उनके अनुसार कार्य करना है, लेकिन करना तो उनके अनुसार ही पड़ता है। चाहे हम भूल जाएं भगवान को, हम ये भूल जाएं कि हम भगवान के नियमों को नहीं मानते, हमें नहीं पता, लेकिन कार्य उसके अनुसार करना पड़ता है। और वही भगवान परमात्मा के रूप में हमें स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं। और भूलने कभी, आज हम भूल चुके हैं अपना संबंध भगवान से, वो भी भगवान देते हैं कि ठीक है भूल जाओ, थोड़ा एंजॉय करो अगर करना चाहते हो। लेकिन जब जीव कहता है कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं एंजॉय नहीं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, भगवान स्मृति भी देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। और ये कहने के बाद जब भगवान ने कहा कि सब कुछ मुझसे ही आता है, तो भगवान अब वेदांत सार दे रहे हैं, क्योंकि यही वेदांत का सार है कि सब कुछ भगवान से आता है। तो भगवान बताते हैं दो तरह के जीव हैं, द्वामिमाम पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो भगवान कहते हैं दो तरह के जीव हैं, एक वो जिनका पतन हो जाता है, दूसरा वो जिनका पतन नहीं होता। तो जिनका पतन नहीं होता वो तो सदैव भगवान के साथ हैं, भगवान का ही उद्देश्य को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है, वो कभी भगवान को छोड़ते नहीं। लेकिन जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, इस जगत में मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, वो संघर्ष करते हैं मन के साथ, इंद्रियों के साथ। तो वो कौन है जिन्होंने भगवान को अपना स्वामी नहीं माना। भगवान आगे कहते हैं कि ये जीव हैं दो प्रकार के, और उनसे भी परे उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युद्धारतः, इनसे परे एक और पुरुष। यहाँ भगवान परमात्मा जो हृदय में, स्वयं श्री कृष्ण जो परमात्मा रूप में हृदय में है, उनका वर्णन कर रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसे एक हम लोग इस जगत में शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे हमें शांति मिल सकती है, कैसे हमें पूर्ण ज्ञान मिल सकता है, कैसे हम प्रसन्नता से रह सकते हैं अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान हमारे हृदय में स्थापित हैं, हर एक के हृदय में है परमात्मा के रूप में और हर एक का पालन कर रहे हैं, वही है हमारे स्वामी और वही इस जगत में आते हैं और सभी का पालन करते हैं। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, हमें ये जानना है कि वही सबके सुहृद हैं, वही यहाँ आते हैं। बस इस चीज को अगर हम समझ जाएं तो बड़ी आसानी से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भगवान ने पहले श्लोक में आपने देखा, 16वें श्लोक में उन्होंने दो प्रकार के जीवों का वर्णन किया, 17वें श्लोक में परमात्मा। तो किसी को मन में आ सकता है कि कृष्ण आपका क्या संबंध है परमात्मा से, तो भगवान कहते हैं मैं ही वो परमात्मा हूँ। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, मैं ही हूँ वो अक्षराद अभिजोत्तम उत्तम पुरुष हूँ सबसे पुरुषोत्तम, अर्थात मुझसे ही परमात्मा आते हैं। सो मैं दिव्य हूं, मैं इन सबके परे हूं, दोनों जो शर अशर उनसे परे हूं और परमात्मा से भी श्रेष्ठ हूं। ये बहुत स्पष्ट भगवान ने कहा है भगवद गीता में, यस्मा क्षरम अतीतो हम, तो वो भी मुझसे ही आते हैं। तो ऐसा वर्णन अब भगवान ने जीवों का कर दिया, भगवान ने वर्णन परमात्मा का किया और भगवान ने अब अपना वर्णन भी कर लिया। और अब अंतिम विभाग 19 और 20 श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह अगर कोई कृष्ण को जान सकता है, जान जाता है, तो वो सब कुछ जान जाता है। यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अब हमारे लिए आदेश है, हमने इतना कुछ सुन लिया 14 अध्यायों में, 15 अध्याय में बहुत कुछ सुन लिया। अब भगवान आदेश दे रहे, यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः, जो मुझे इस रूप में भगवान के रूप में जो सभी जीवों से परमात्मा से सभी रूपों से उस श्रेष्ठ हैं जो जान लेता है, यो मामेव, तो वो जो मुझे जान लेता है कि बिना संशय के कि भगवान ही वो परमात्मा जो हृदय में वो भगवान है और भगवान उनसे भी श्रेष्ठ अपने धाम में है, इसको जान जाता है तो इस ज्ञान का प्रभाव क्या होता है, इसका फल क्या होता है। भगवान कहते हैं सर्वविद भजति माम, भजति मतलब वो मेरे भजन में लगता है, मेरी सेवा में लगता है। सर्वभावेन भारत, बहुत अच्छी तरह से सारा समर्पण के भाव में वो मेरी सेवा में लगता है। और ये कैसे होता है, इसका तरीका क्या है? तो सबसे पहले हमें जानना है कि कौन सब चीजों को जानता है, जो श्री कृष्ण को बिना संशय के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता। और ऐसे ज्ञान का फल क्या होता है, व्यक्ति भक्ति में लगता है पूर्ण रूप से। और उसको भक्ति में लगने का मार्ग क्या है, कोई ऐसा नहीं कि सोचे ये करूं किस तरह से भक्ति हो, नहीं, सही दृष्टि से समर्पित भाव से भक्तों से श्रवण करना, ये तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। और आखिरी श्लोक इस अध्याय का, भगवान वेदों के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, गुह्यतमम, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम मतलब सबसे गुह्य बात, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस् मानस्यात् कृतकृतश्च भारत, कि मैंने जो तुम्हें अभी बताया है कि बड़ा गुह्य चीज है शास्त्रों की, इति गुह्यतमम शास्त्रम, तो इसको समझने का लाभ क्या है, व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा। और उसकी उसकी योग्यता क्या दे रहे हैं, अनघ, अनघ मतलब पाप नहीं करना। और इस ज्ञान को समझना कैसे है, जैसे भगवान ने दिया वैसे ही। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगना है, तो क्यों नहीं लोग लग पा रहे हैं? तीन बाधाएं हैं कृष्ण तक पहुंचने में। तीन बाधाएं हैं हमारी भक्ति में। पहली है असत तृष्णा। तृष्णा मतलब ऐसी इच्छा, असत कृष्णा मतलब ऐसी इच्छा जो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, असत तृष्णा। तो जब हम ऐसी कोई इच्छा करते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है, तो फिर ये क्या होती है, ये एक बाधा है हमारी भक्ति के पथ में। इन तीन बाधाओं को जरूर पार करना चाहिए। तो पहली है असत तृष्णा, हम ऐसी इच्छा करते रहते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन हम इच्छा नहीं करते कि मुझे कृष्ण मिल जाए। और कोई इच्छा नहीं है मेरी, क्योंकि मुझे पता है अगर कृष्ण मिल गए तो मुझे सब कुछ मिलेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है कि जो छोटी छोटी चीजों को ले ले। जैसे हमने एक बार कथा सुनाई थी कि एक राजा ने घोषणा कर दी, कल दिन में कोई भी अगर मैं बगीचे में होऊंगा, अगर मुझे आकर देख लेगा तो उसे मैं बहुत अच्छा उपहार दूंगा। सब लोग आए, लेकिन बगीचे में बहुत सारी चीजें थी, अच्छे फल लगे हुए थे, सोने के सिक्के पड़े हुए थे, संगीत चल रहा था, खाने के लिए बहुत कुछ था। सो सारे लोग उसी में फंस गए, कोई पहुंच नहीं पाया, राजा खड़ा रहा, सब उसी में फंस गए, क्योंकि समय सीमित था। ये कहा गया था कि बस एक घंटा दो घंटे का समय है, उसमें अगर पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो बाहर। तो सबको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। एक ही व्यक्ति था जिसने कुछ नहीं देखा, कोई खाने की ओर ध्यान नहीं गया, संगीत की ओर ध्यान नहीं गया, सोने के सिक्कों की ओर ध्यान नहीं गया, डांस चल रहा था ध्यान नहीं गया, सीधे राजा के पास गया। राजा ने उसको अपना मित्र बनाया और अपना आधा राज्य पूरा दे दिया। सो इसी तरह भगवान बहुत कुछ देने तैयार है, लेकिन हमारी इच्छा हम तक पहुंचते ही नहीं, हम जाते ही नहीं, हम अन्य इच्छाएं कर लेते हैं। इसे असत तृष्णा कहते हैं। और दूसरा हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम मतलब आध्यात्मिक रूप से हृदय बड़ा कमजोर है। हो सकता है भौतिक दृष्टि से आपका हृदय बड़ा ताकतवर है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा कमजोर है। भगवान की भक्ति करने में आलस है, भगवान का ज्ञान लेने में आलस है, भगवान का विषय सुनने में आलस है, भगवान की सेवा करने में आलस है, हृदय दौर्बल्य। तो इस कमजोरी को हटाना चाहिए। और तीसरा है अपराध। जब हम भक्ति के पथ पर होते हैं तो अपराध एक बादल की तरह है, जो भगवान का जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है भगवान, सूर्य के समान वो ढक देते हैं बादल। तो अपराध है वो भगवान को ढक देते हैं, हम तक भगवान का ज्ञान आ नहीं पाता। तो इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ये जो तीन हमारी बाधाएं हैं इस पथ पर, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध, इनसे हम दूर रहें और श्री कृष्ण को समर्पण कर सकें। और इस 15वें अध्याय का यही सार है। सार के रूप में हम इसको ले सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना। कई बार लोग कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। हमें बताइए कौन विदेशी है? आप अगर भारत में हैं तो वही सूर्य है, अमेरिका में हैं तो भी वही सूर्य है, वही चंद्रमा है। तो जब भगवान के राज्य में कोई विदेशी नहीं है तो हम किसको विदेशी कह सकते? तो भगवान अब अगर हम चले जाएं कहीं भी, अमेरिका चले जाएं, वही सूर्य होगा, वही चंद्रमा होगा, भगवान किसी के लिए भेद नहीं कर रहे। इसी तरह हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकारना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, और भक्ति के पथ पर लगना चाहिए ताकि वो बुद्धिमान हो सके, इस जगत से बाहर जा सके, इस वृक्ष से अश्वत्थ वृक्ष के बाहर जा सके, शुद्ध कर सके। सच्ची बुद्धिमानी ये नहीं है कि हम इस जगत में इस वृक्ष पे, अश्वत्थ वृक्ष पे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे। सच्ची बुद्धिमानी है कि हम इस जगत के परे जाएं। और इसीलिए अगर हम इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, इस स्तर पर नहीं आते हैं, तो हम सही दृष्टि से बुद्धिमान नहीं है। तो सार के रूप में इस पुरुषोत्तम योग का हम ये अर्थ निकाल सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि किस तरह भक्ति में लगना, भगवान की स्थिति को समझना, उनमें उनमें जो समर्पण के लक्षण भगवान हम लोगों ने चर्चा की उनको अपने अंदर लाना, समर्पण करना, और जो बाधाएं आए, तीन बाधाएं हमने वर्णन की, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम और अपराध, इनसे हमें बचना और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में श्रद्धा से और प्रेम से लगना। और जो लोग नहीं लगते हैं उनका वर्णन अब 16वें अध्याय में भगवान करने वाले हैं, असुरों का वर्णन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हाथ उठा सकते हैं, हम लोग आपको अनम्यूट कर देंगे। यस नम्रता।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे
प्रभु जी, आप अभी अभी बताए हैं कि हर इंसान के मन में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि नम्रता का भाव होना चाहिए, और इसी से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। आज जो सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सक्सेसफुल नहीं है, ऑब्वियसली वो इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल है, बट जैसे कृष्ण बोल रहे हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, तो कृष्ण ग्रेटेस्ट है इसलिए वो बोल रहे हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, बट ये जो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं वो यूथ को ऐसा डोज दे रहे हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं अपने आप को, बोलो तुम लोग कि आई एम द ग्रेटेस्ट, और ऐसा कुछ अफर्मेशन दे रहे हैं कि तुम बोलो आई एम ए विनर, आई एम दैट एंड दोज, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो करने के लिए। तो ऐसा इससे ये नहीं हो रहा है कि हम अहम को ज्यादा महत्वता दे रहे हैं? और अगर मतलब अगर ये गलत है तो सही अफर्मेशन क्या होना चाहिए एक यूथ के लिए? क्योंकि अगर वो इसी चीज को अपने आप से बोलता जाएगा और रियलिटी में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी या रियलिटी में उसे वो चीजें नहीं मिलेंगी तो वो गलत कदम उठा लेता है।
थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। यस, ये इस जगत में इस समय हो रहा है। आप बोलिए आप जीत जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे, आप जीत जाओगे, तो ये तो सुनने वाले को भी सोचना चाहिए। जैसे भारत में हमारे एक एथलीट ने, अभी वो गोल्ड मेडल लेकर आए ओलंपिक्स में, राइट, ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड नहीं मिला था, गोल्ड मेडल मिला, बड़ी बात है। सो क्या उनका जीवन हमें स्टडी करना चाहिए? आप बाहर तो जो चीज छोड़, उनका जीवन स्टडी कीजिए कि क्या उनको गोल्ड मेडल केवल ऐसे मिल गया था कि वो बैठकर ये सोच रहे थे, बोल रहे थे बस मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, और उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, केवल उससे मिल गया? नहीं। और ना ही उन्होंने कभी बैठकर ऐसे कहा मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। हाँ, इच्छा निश्चित थी कि हम प्रयास करेंगे और हम मेडल लाएंगे, लेकिन केवल वो बैठे नहीं थे। तो ऐसी चीजें हमें ये जो बताया जा रहा है ये निश्चित अहम को नहीं बढ़ा रहा है, ये मोह को बढ़ा रहा है कि केवल बोलने से होगा। हाँ, एक दृष्टि है कि हमारा पॉजिटिव मूड होना चाहिए कि क्यों नहीं, भारत में हम क्यों नहीं ला सकते मेडल, लेकर आएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल उसको अफर्मेशन, हाँ बस ये करो, ये करो, ये करो, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तो इसीलिए हमारे क्या अफर्मेशन होना चाहिए एक स्टूडेंट लाइफ में, क्या उनको कहना चाहिए, देखिए हमारे अफर्मेशन भी किसी ग्राउंड पर, किसी आधार पर होने चाहिए। केवल ऐसे ही कुछ बोल देने से कुछ नहीं होता। जैसे कई लोग चीजें कहते मैं भगवान हूं, उनको कहा जाता है कि आप बोलते रहो भगवान हो, एक दिन आप भगवान बन जाओगे, तो ये तो मूर्खता है। तो इसीलिए ये हमें मोह में डालती है। तो अफर्मेशन क्या होना चाहिए? अफर्मेशन होना चाहिए, भागवतम में दिया है, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, कि निश्चित इस जगत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं इन चैलेंजेस को पार करूंगा कृष्ण की कृपा से। सो अफर्मेशन कंप्लीट हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। अगर ये एक चीज लग जाए उस अफर्मेशन में, तो फिर वो अफर्मेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी बल पे नहीं जीत सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे, वी विल। सो स्टूडेंट की लाइफ में क्या है, उन्हें 100% प्रयास करना है टू बी ऑन द टॉप, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ये भी याद रखना है कि आई विल कम ऑन द टॉप ओनली बाय मर्सी ऑफ कृष्णा. सो इसीलिए आई कैन डू इट बाय मर्सी ऑफ कृष्णा इज द राइट मूड. सो आई कैन डू इट मीन्स आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल गिव माय 100%. जैसे हम कह रहे थे गोल्ड मेडल लाए हैं तो उन्होंने अपना 100% दिया, प्रैक्टिस की, बारंबार किया, सब किया. सो दैट इज 100%. बट एट द सेम टाइम आप अगर देखें तो जिस समय उनको गोल्ड मेडल मिला था, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने पहला शब्द यही कहा था, भगवान की कृपा से मिला. सो ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करते हैं. आप उनके इंटरव्यूज देखिए, तो कहीं हमने तो ज्यादा नहीं देखे, लेकिन जो एक देखा था उसमें किसी ने हमें भेजा था, तो आप हो सकता है उन्होंने कई बार और इस बात को कहा हो. सो हमारे लिए अफर्मेशन है, अगर नहीं भी कहा उन्होंने, हमारे लिए अफर्मेशन ये है कि आई कैन डू इट बाय मर्सी ऑफ कृष्ण. थैंक यू नम्रता फॉर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन. शालिनी.
हरे कृष्णा प्रभु जी.
हरे कृष्णा
प्रभु जी. जैसे आपने अभी बताया कि हमें कृष्ण का सतत चिंतन करना चाहिए, बट प्रभु जी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल लाइफ में हम इतने बिजी शेड्यूल होता है हमारा कि हम कृष्ण को बाय द चैंटिंग करने के टाइम और जो उनका वर्शिप होता है बस उतने टाइम तक हम याद रख पाते हैं, लेकिन हम उन्हें सतत यानी ऑलवेज हम उन्हें कैसे याद रख पाए प्रभु जी?
वेरी गुड क्वेश्चन. सो अगर हम प्रारंभ करें, इफ वी बिगिन, जितना हमारे पास समय है, जैसे हम चैंटिंग के समय याद करते हैं, अभी हम सुन रहे हैं उनके बारे में तो हम याद करते हैं, या कोई और समय में. सो अगर हम शुरुआत उससे करें कि ठीक है कम से कम उतना, तो 0 से हम 5% आ गए, 10% आ गए, लेकिन टारगेट है 100% सतत उनको याद करना. सो उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास हमें करना चाहिए. जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, आशा है आप मॉर्निंग के मेडिटेशन सेशन में आ रहे होंगे. आप में से जो लोग नहीं आ रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे 2 ग्रुप इस समय मेडिटेशन के चल रहे हैं, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज के लिए. सो दोनों ग्रुप्स में गर्ल्स और बॉयज, आप गर्ल्स गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज बॉयज ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. रोज सुबह मेडिटेशन होता है. तो ये मेडिटेशन क्या है? ये एक विधि है हमारे माइंड को ट्रेन करने की कि कैसे हम 24 आवर्स भगवान का स्मरण कर सके. सो हम लोग रोज सुबह में करीब आधा घंटा 1 घंटा ही मेडिटेशन हो रही है स्टूडेंट्स के साथ काफी समय से. आशा है आप में से कई लोग उसमें जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए. और हम रिक्वेस्ट करते हैं जो गर्ल्स जा रहे हैं उसमें सेशन में, वो उनमें से कोई एक यहाँ पर लिंक भेज सकते हैं कि गर्ल्स सेशन का लिंक, और बॉयज जो उसमें है वो बॉयज सेशन का लिंक भेज दें, ताकि जिन गर्ल्स को बॉयज को ज्वाइन करना हो कर सकें. सो एक विधि है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि कैसे हमें सतत भगवान का स्मरण करना है. लेकिन उसके लिए जितना हम कर रहे हैं पहले, जितना समय उतना करें, उसको प्रारंभ करें, फिर भगवान धीरे धीरे वो आपको 24 आवर्स की ओर ले जाएंगे. और 24 आवर्स सतत का मतलब, चिंतन का मतलब ये नहीं कि बाकी सारे काम छोड़कर हमें चिंतन करना, ये ध्यान रखिए, काम करते हुए भी चिंतन हो सकता है. तो इसीलिए हमें अभी क्या लगता है, अब हमें चैंटिंग कर ली बस उतना हो गया, अब हम अपना घर का काम करें, हम अपना ऑफिस जाएं, हम अपने कॉलेज जाएं, तो उस समय हम भगवान का स्मरण नहीं, उस समय भी कर सकते हो, आप कॉलेज जाते हुए कर सकते हो. तो इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब इस मेडिटेशन सेशन में जरूर भाग लें. समृद्धि, आपके क्या प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें?
मन को नियंत्रण करने के लिए ऑफकोर्स हम लोग तो इसका बहुत बड़ा सेशन देते हैं, माइंड कंट्रोल, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल. और आपका उत्तर हम 5 मिनट में कैसे दें, 1.5-2 घंटे की बात है, बट ठीक है. सार में, मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हमें मन के वर्किंग को समझना होता है, मन कैसे वर्क करता है. और फिर दूसरा, मन की वर्किंग को समझकर हम चर्चा करते हैं कि मन की एक्सरसाइज क्या है, क्योंकि मन को जब एक्सरसाइज नहीं देते हैं तो मन भी थोड़ा सा वीक हो जाता है. तो मन की एक्सरसाइज क्या है और मन का वर्किंग क्या है, तो ये दोनों चीजें हैं. और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो मन के लिए क्या जरूरी है, एक्सरसाइज हो गई, मन की वर्किंग हो गई कैसे वर्क करता है, अब मन को लगाना कहाँ पर है। कंट्रोल करने का अर्थ क्या है, कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं कि मन को शून्य करना, कि मन में कोई विचार ही नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी कोई ना कोई विचार तो आएगा मन में। तो फिर मन को क्या करना है, उसकी टेक्निक क्या है, कि सबसे पहले उसको विड्रॉ करना होता है रॉन्ग एंगेजमेंट से और उसको लगाना होता है राइट एंगेजमेंट, ये आवश्यक है। सो मन के लिए मंत्र, मनत्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे उसको मंत्र कहते हैं। सो मंत्र मेडिटेशन हेल्प्स, एंड देन प्रॉपर पॉजिटिव एंगेजमेंट होना चाहिए मन का, और एसोसिएशन, क्योंकि मन किससे प्रभावित होता है, संग से, हमारा जैसा संग है उससे मन प्रभावित होता है। तो ये कुछ चीजें हैं मन को नियंत्रण करने के लिए, और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप वेट कीजिए जब हम लोग एक सेशन करें आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का, सो आप लोग पॉसिबली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ चैट बॉक्स में गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अलग अलग ग्रुप दिए हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो कृपया जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स ग्रुप में जाएं और बॉयज जो हैं वो बॉयज ग्रुप में जाएं। प्रतिमा शाह।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने कहा कि हमें आफ्टर डेथ अलग अलग गुण के आधार पर अलग अलग शरीर मिलते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये गुण कौन से हैं जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, वो गुण या मतलब इनबिल्ट गुण, या फिर हमें हमारे माता पिता के द्वारा संस्कार से जो प्राप्त होते हैं वे गुण, या तो फिर हम भौतिक जगत में आके जो प्राप्त करते हैं वे गुण, कौन से गुण के आधार पर हमें शरीर मिलता है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो गुण हैं जिनकी बात हुई, मूलतः यहाँ बात हो रही थी तीन गुणों की, प्रकृति के तीन गुण सत्व रज तम, लेकिन उसके आधार पर कैसे गुण मिलते हैं। सो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय वो अपने पूर्व जन्म के गुणों को ले, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर गुणों को लेकर आता है, और जब माता पिता उसको संस्कार देते हैं तो उनसे उसकी रिफाइनिंग होती है। अगर माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, बुरे संस्कार दिए, क्या वो उसकी रिफाइनिंग होती है। ये दोनों मिलकर पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के संस्कार जो माता पिता ने दिए, ये हमारा अगला, ये हमारा स्वभाव या हमारे विचारों को बना। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है जो अपने कर्म लेकर आया है, और मान लीजिए उसके कर्म अच्छे हैं उसने किया, और फिर उसको परिवार में संस्कार अच्छे मिलते हैं, तो उसके विचार कैसे होंगे, अच्छी चीजें करना, बुरी चीजों से परे जाना, तो वो अच्छे कार्यों में लगेगा, तो उसके द्वारा उसका अब अगला शरीर तैयार हो रहा है, वो जैसे कार्य कर रहा, क्योंकि उसी के आधार पर, पूर्व जन्म के कार्यों के आधार पर ये मिला है, तो इस जन्म के कार्यों के आधार पर अगला मिलेगा, तो अपना जन्म कर रहा है। लेकिन बच्चे के लिए दोनों चीजें कार्य करती हैं। जैसे कभी कभी हो सकता है कि देखा जाता है कि बच्चा प्रारंभ में अच्छा नहीं है, लेकिन माता पिता के संस्कार से बहुत अच्छा बन सकता है, तो ये दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। इसीलिए केवल पूर्व जन्म का नहीं है, तो पूर्व जन्म का तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ही, उससे हमारा इस जन्म का शरीर मिल गया है और स्वभाव भी एक है, लेकिन अब संस्कार, हमारा संग, और जैसे हम यहाँ पर इतनी बातें कर रहे हैं कि अच्छा संग होना चाहिए, तो क्यों हम बातें कर रहे हैं, अगर वो पूर्व जन्म के आधार पर है तो इसका कोई लाभ ही नहीं होगा, इस संस्कार का या इस संग का। तो जितना हम संग कर रहे हैं, जैसे हमें संस्कार मिले हैं, हम उस तरह से अपने जीवन को मोल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है, आप बंधे हुए नहीं हो पूरी तरह से पूर्व कर्मों से, तो आपके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। नहीं, स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता का अगर हम सही उपयोग, उसी लिए इतने सारे लेक्चर दिए जा रहे हैं, उसी लिए आध्यात्मिकता के भगवद गीता भगवान ने कही, नहीं तो भगवान को भगवद गीता कहने की क्या जरूरत थी अगर कुछ बदल ही नहीं सकता। तो सो हम चाहे किसी भी तरह से आए हुए हों, अब अपने प्रयास पर, आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से, हम उसको बदल कर एक अच्छे स्थान की ओर जा सकते हैं। हमारा अच्छा शरीर बना सकते हैं। यस, आप कुछ और कहना चाहते हैं?
प्रभु जी, बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपके अगले लेक्चर्स, आई जॉइन फ्रॉम द 14th अध्याय, तो अगले लेक्चर्स हाउ कैन आई गेट?
वो सारे अपलोड हुए हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें भगवद गीता 18 सेशंस हमारा नाम डालकर, तो आपको सारे अपलोड हैं। हमारे ख्याल से शायद एक दो अपलोड नहीं होंगे 13-14 अध्याय, मगर बाकी सारे अपलोडेड हैं, तो वो आपको पहले अध्याय से मिल जाए। नहीं तो यहाँ पर अगर कोई किसी के पास लिंक है तो भी चैट बॉक्स में भेज सकते हैं।
प्रभु जी, लिंक मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं सब
जो लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर वो लिंक भेज सके, जिनको पता है कि हमारे लेक्चर कहाँ है, कृपया लिंक भेज दीजिए इसमें। ओके कनक, यू हैव सम क्वेश्चन, आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्णा
गुरु जी, मेरे पास सुबह का लिंक नहीं है, जब आप 6 बजे मैरिनेशन करवाते।
सॉरी, क्या कह रहे हो कनक?
गुरु जी, मैं बोल रही हूँ कि जब आप सुबह मेडिटेशन करवाते तो उसके पास मेरा लिंक नहीं है।
आपके पास लिंक नहीं है मेडिटेशन का?
नो गुरु जी।
अभी चैट बॉक्स में भेजा, देखिए आप ऊपर देखेंगे ना तो चैट बॉक्स में है, गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
ओके गुरु जी।
यहाँ पर देखिए दोनों भेजे हुए हैं, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, तो आप गर्ल्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको है ना, ऊपर देखो एक लिंक है, शालिनी ने भेजा है गर्ल्स मेडिटेशन ग्रुप का, सो आप उसको कॉपी करके रख लो कनेक्ट, ठीक है?
ओके गुरु जी,
थैंक यू। ओके सस्मिता साहू।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, ये जो भौतिक जगत को जो पत्र और ट्रेनी से कैसे समझा जाए, अस्वस्थ की पुत्रिया के बारे में जो बताया है पहला श्लोक में, तो ये पत्र ट्रेनी से हम क्या समझेंगे आध्यात्मिक जगत के बारे में?
जो टहनिया है, जैसे पूरा जगत है, तो पत्र तो बताए गए कि उसके जो वेदों के श्लोक इत्यादि है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते होते हैं तो वेदों के श्लोक है। जो टहनिया है अलग अलग, ये अलग अलग स्थान है, या कहना चाहिए कि 84 लाख टहनियां हो सकती हैं, तो अलग अलग स्थान है जहां ये जो 84 लाख योनियां है, दरअसल ये हमारे रहने के स्थान है जीव के लिए, 84 लाख स्थान। तो कभी इस टहनी पर, कभी उस टहनी पर, कभी इस टहनी पर, कभी उस टहनी पर, अर्थात कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, ऐसे हम घूमते रहते हैं। और फिर कभी कभी आप देखते हो कि छोटी छोटी टहनियां होती हैं और एक बड़ी बड़ी होती है, विशाल उसके ट्रंक्स या बड़े बड़े टहनियां कहा जाती हैं। तो वो जो टहनियां होती हैं, जैसे ये जो पूरा जगत है, ये हमारे रहने के लिए कितने स्थान बनाए हैं इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में 14 स्थान बने हैं हमारे रहने के लिए, जिन्हें 14 लोक कहते हैं। और उन 14 स्थानों को फिर 84 लाख स्थानों में बांटा गया, तो वो भी हमारे लिए रहने के स्थान है जीव के लिए, जीव उसको स्वीकार करता है। तो इस तरह से हम लोग उन टहनियों को या वृक्ष को समझते हैं। आप भगवद गीता अगर आपके पास हो तो 15वां अध्याय का 1, 2, 3 श्लोक पढ़ेंगे तो ये सब विस्तार से उसमें बताया गया है, ठीक है? प्रतिमा मत जी, आपके लिए वो एक यहाँ पर भेजा है चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक, आप उसको चेक कर लीजिए, अभी भेजा है किसी ने तो उसको आप चेक करके दे दीजिए, थैंक यू। नम्रता, आप कुछ और पूछना चाहते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सतयुग में हर एक थॉट्स का भी अगर सही थॉट्स होता था तो उसे पुण्य मिलता था, और अगर कुछ गलत थॉट्स होता था या बुराई का होता था तो उसका भी फल मिलता था, तो क्या कलयुग में भी ऐसा होता है? क्योंकि कलयुग में तो माइंड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा माइंड में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है।
आप माइंड में कृष्ण को लाओ, क्यों इधर उधर की बातें लाते हो, क्या क्या चलता रहता है? लेकिन खैर, ऐसा कहा गया है कि कलयुग में किए गए पाप का प्रभाव नहीं होता, पाप नहीं माने जाते, लेकिन सतयुग में तो अगर कोई मन में भी पाप करता था तो उसको दंड मिलता था। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम कलयुग में आंख बंद करके मन में पाप करें क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है? नहीं। हाँ, हो सकता है कि दंड ना मिले, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा चीजें, सिंफुल चीजें मन में लाते हैं तो उससे हमारी चेतना पर प्रभाव होता है। तो क्या होता है, तीन दरवाजे हैं, पहला है मन, दूसरा है वाचा और तीसरा है इंद्रियां। मतलब मनसह कर्मणा वाचा। तो हम पहले मन में लाते हैं चीजों को, फिर हमारे शब्दों में आ जाती हैं वो चीजें, और फिर वो एक्शन में आ जाती है। तो इसीलिए हालांकि कलयुग में मन में किए गए पाप को पाप नहीं माना जाता या उसका दंड नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर हमारा मन ऐसी चीजों में लगा है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे एक्शंस पे आता है, और एक्शंस पे आने से फिर हमारी चेतना अगेन दूषित होती है। तो इसलिए इसका मार्ग ये है कि हम प्रयास ये करें कि मन में भी हम कोई गलत कार्य ना लाएं। हाँ, कलयुग में संभव नहीं है, बहुत कुछ आ जाता है मन में, तो उसी का अभ्यास करें। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशती, कि ये संघर्ष चल रहा है जीव का मन और इंद्रियों से, कि मन में बहुत कुछ आता है, वो नहीं चाहता, फिर भी आता, फिर नहीं चाहता। भगवान कहते संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन हमें संघर्ष में जीतना है और जीतने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हार मानने के लिए कोई प्रयास नहीं है। मान लीजिए हमारे मन में विचार आ रहे हैं, हमारे और चेतना खराब हो रही है, हम बोले भी हमसे जो होने दो, जो हो रहा है देखा जाएगा, तो वो तो कुछ बड़ा सरल मार्ग है। हार जाना तो बड़ा सरल मार्ग है, संघर्ष करना और मन को जीतना ये बुद्धिमानी का और वीरता का कार्य है, तो हमें उसको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हमने अनाउंस किया था कि अब हम इस वीक में ये पूरे 18 सेशंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब हमारे आज 15वां अध्याय हो गया। 16, 17, 18 तीन केवल अध्याय बाकी हैं आपकी पूरी भगवद गीता होने पर। जिन लोगों ने भी, हमें नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पहले अध्याय से अंत तक अभी तक रुके हैं और 18 तक रुकेंगे, कई भाग्यवान लोग होंगे ऐसे। तो ये अब तीन अध्याय हमारे केवल बाकी हैं। कल हम लोग 16वें अध्याय की चर्चा करेंगे, और फिर गुरुवार को, थर्सडे को 17वें अध्याय की, और शनिवार को 18वें अध्याय की। तो 18 अध्याय पूरे भगवद गीता के हो जाएंगे, अनलेस आप 19वें अध्याय पर भी चर्चा करना चाहो, 19वां अध्याय तो है नहीं, तो इसीलिए कृपया इसको कीजिए। प्रतिमा माता जी, आप और कुछ पूछना चाहते हैं?
सॉरी फॉर इंटरप्शन प्रभु जी, आप कल कोई फॉर्म के बारे में कह रहे थे, फॉर्म भरना है ऐसा
कल?
हाँ, कल आप बोल रहे थे, वो कौन सा फॉर्म है?
नहीं, वो एक्चुअली ये जो प्रारंभ हुआ था शुरुआत में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पूरा अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे।
ओके ओके,
इसके
ओके। सो आई डिडंट नो अबाउट दैट एक्चुअली, आई हैड कम टू नो आफ्टर 14th।
नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। आई मीन दैट्स जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट,
इट्स ओके, इट्स ओके।
Oh, I'm seeing many hands right now. I thought program is over. I was about to leave, but I'm seeing many hands. So, okay. Let me ask. Amulya.
Hare Krishna, Prabhuji.
Hare Krishna.
हाँ, आज ये संसारिक प्राणी हमें, तो कौन सा स्पिरिचुअल ड्यूटी की पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, या सांसारिक ड्यूटी जो हमारा है उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, या हाउ टू मैनेज बोथ ऑफ देम?
बैलेंस करना सीखना है प्रभु जी, बैलेंस करना सीखना चाहिए।
हाँ जी,
क्योंकि अगर हम किसी एक को प्रायोरिटी देते हैं अभी की अवस्था में, तो हम दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं, और उसको नेग्लेक्ट करके फिर हम दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। मान लीजिए कि आपने प्रायोरिटी आपके भौतिक कार्यों को दे दी, सांसारिक कार्यों को, और आध्यात्मिक को बिल्कुल नहीं दिया, तो क्या होगा? हो सकता है थोड़ा सा आप उसमें जाएं, लेकिन डिस्टर्बेंस जब जरा सा होगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे माइंड को। इसलिए कई बड़े बड़े लोग हमने सुना है, देखिए आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो लोग संभाल नहीं पाते। जैसे एक बड़ी फेमस कोई फिल्म स्टार थी, उसने आत्महत्या कर ली, ऐसे कई लोगों का है। तो सक्सेस होना क्योंकि आध्यात्मिकता नहीं है बिल्कुल, तो फिर संभाल नहीं पाते। दूसरी ओर अगर हम इस अवस्था में केवल आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देंगे तो अभी हम तो जगत में हैं, परिवार में हैं, संसार में हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। इस जगत में देखिए सब कुछ बैलेंस से चलता है। सूर्य पृथ्वी के उतने ही दूरी पर है जितना पृथ्वी सहन कर सकती है। अगर सूर्य 6 इंच पास में आ गया तो हम सब जलकर खाक हो जाएंगे, और सूर्य 6 इंच दूर चला गया तो हम सब जमकर बर्फ जम जाएगी हमारी, मर जाएंगे। तो ये बैलेंस हर जगह पर है, तो इसलिए जीवन में भी ये बैलेंस हमें निश्चित लाना चाहिए, जिसके द्वारा हम इन दोनों को पालन करते हुए धीरे धीरे सही उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ था, आई थिंक ऊपर पूछा था हमने, ओके हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवोशनल सर्विस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भक्ति और कृष्ण भावनामृत ये दोनों एक ही चीज है, तो इसीलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर आपने जो लिखा है उसी को भक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि भक्ति की तो कृष्ण की ही जाती है, इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न चैट बॉक्स में हमें दिख नहीं रहा। ओके, आप सबको ग्रुप जरूर भेजे हैं, आप सबसे विनती है कृपया ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ओके, जो मेडिटेशन सेशंस हैं, अच्छा आपने पूछा है यस्टरडेज क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाए, आप उसको सुन सकते हैं, YouTube पर है वहां पर। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। नम्रता, आपका हाथ ये अभी है या पहले से ऊपर?
प्रभु जी, आप एक मेडिटेशन सेशन में हमें एक टेक्निक बताए थे कि हमें श्री कृष्ण के देखना है, उनके बाल कैसे हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करना है, और जब भी हमारे सामने कोई ऐसी मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमें नहीं देखना चाहिए तो हमें वो चीजें रिकॉल करना चाहिए। तो आज भी मैं मतलब अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं हर रोज सुबह देखती हूँ और उसे अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, तो ये टेक्निक मुझे मतलब कब तक करना चाहिए?
बहुत अच्छा है ये टेक्निक जो आप पालन कर रहे हो। तो जब तक हम बिना कॉन्शियसली मतलब बिना प्रयास किए ये चीज कर सके, सो ये हमारा एक नेचर बन जाना चाहिए, नेचुरल फॉर अस, कि हमें उसको फोर्स नहीं करना पड़े कि अब मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना, ये नहीं देखना। जब ऐसा हो जाए कि बड़ी नेचुरल हो जाए कि हम कोई भी चीज देखें तो हमें कृष्ण का स्मरण आ जाए, बस वो परफेक्शन है, तो हमें परफेक्शन तक जाने का प्रयास करना। ठीक है, ओके, आकाश आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, हमारा सवाल ये है कि हम हमारा मेंटली जो है हमेशा बैलेंस नहीं रहता, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानी होती है, हमें अलग अलग गलत काम लेते हैं। कोई ऐसा सेशन नहीं है जो हमें रेगुलर हो और उसमें ज्वाइन करे सुबह?
हाँ, आप एक काम कीजिए अभी के लिए, आप ऐसे हम लोग बहुत से सेशन रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए जो सुबह का मेडिटेशन सेशन है 6:15 बजे रोज बॉयज के लिए होता है, 6:30 से 7:15, आप उसको अभी ज्वाइन करिए और उसमें अनाउंस किया जाएगा जो रेगुलर सेशन होंगे, जिसको आप हर दिन या हर हफ्ते आप ज्वाइन कर सकोगे।
नहीं प्रभु जी, हमारे ये सवाल है, हम रेगुलर करना चाहते हैं, क्योंकि बीच बीच में ऐसा क्या होता है कि बीच में रुक जाता है, फिर हम कहीं और चले जाते हैं या फिर कुछ काम में लग जाते हैं, तो नहीं
जो मेडिटेशन सेशन ही रेगुलर है, हर रोज है, एवरी डे, और उसमें फिर आपको और भी सेशंस में ज्वाइन कराएंगे। सो आप कहाँ से हो आकाश?
प्रभु जी, हम यूपी से हैं, जौनपुर जिला से।
सो बहुत अच्छा है,
आप मछली पहले हमारा तहसील है,
वो मेडिटेशन का सुबह का ज्वाइन कर लीजिए, फिर रेगुलर सेशन आपको इतने सेशन करा देंगे कि आप कहीं जा नहीं पाओगे, चिंता नहीं करिए, हमारे पास बहुत सारे सेशंस हैं। ठीक है,
ओके प्रभु जी, थैंक
यू। हरे कृष्णा आकाश, लेकिन ज्वाइन जरूर कर लेना कल सुबह, आप इसमें लिंक है, ले लो उसमें से। थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कल फिर मिलेंगे, 16वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, अभी भगवान ने पुरुषोत्तम योग में अपना वर्णन किया, अब हमारा वर्णन करेंगे 16 अध्याय में कि सारे असुर कैसे होते हैं। तो बहुत अच्छा वर्णन है, कृपया जरूर आइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।